नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शरणार्थी, जिसे लिखा है दीपक गिरकर ने। तो कहानी शुरू करें। शरणार्थी। कल रात को मेरे चचेरे भाई संजय भैया का फोन आया और बताया कि निसरपुर में अपने घर के पास रहने वाले शर्मा जी के परिवार की चाची, जो कि कमलापुर वाली बहू के नाम से पहचानी जाती थी, नहीं रही। आज अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वह स्वर्ग सिधार गई। इतना बोलते बोलते भैया की आवाज़ रुक गई। उस रात यह खबर सुनने के बाद मेरी पूरी रात छटपटाहट में ही बीती। मैं बचपन के ख्यालों में खो गया। चाची की उम्र जब मात्र 14 वर्ष की थी, तब वह चाचा जी के साथ शादी करके यहाँ निसरपुर में आ गई थी। कितनी ममतामयी थी चाची जी, वात्सल्य की मूर्त। रोज रात को चाची हम सभी बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती। चाची जी के बेटे ओम से फोन से बात की तो मालूम हुआ कि कुछ दिनों से चाची अंदर ही अंदर काफ़ी टूट चुकी थी। चाची का चेहरा उतर गया था। वे घर के अंधेरे कोने में बैठकर आंसू बहाती रहती थी और एक दिन उनकी आंखों का सारा पानी बह चुका था। उनकी आंखें वीरान हो चुकी थी। चिंता और घबराहट की गाढ़ी परतों ने चाची की झुर्रियों को जरा सा और उभार दिया था। चाची निसरपुर गांव से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। इस गांव में उसके और उसके जैसे अनेक लोगों के धागे दौरे जुड़े हुए थे। लेकिन जब से चाची को मालूम हुआ कि एक बड़े बांध के बनने से निसरपुर गांव और आसपास का क्षेत्र डूब में आ रहा है और यह गांव छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी की तरह सरकार द्वारा बनाए गए मकानों में रहना पड़ेगा, तब से ही चाची निढाल हो गई थी। जैसे उसकी सारी शक्ति निचोड़ ली गई हो। पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ था। शरणार्थी शब्द मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं गहरे विचारों में खो गया। मैं सारी रात करवटें बदलता रहा। नींद मेरे से कोसों दूर थी। शरणार्थी शब्द मुझे झकझोर रहा था। कुछ वर्षों पहले मैंने भी तो मेरे माँ बाबूजी के साथ कुछ ऐसा ही किया था। गांव से हमारा पुश्तैनी मकान और कुछ जमीन थी। बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद मैं माँ बाबूजी को शहर में अपने पास ले आया था। माँ बाबूजी तो जब अपने गांव की याद आती तो वे साल में एक बार गांव हो भी आते। बाबूजी हमसे कहा करते थे कि अपने गांव से, अपने गांव के मकान से, अपनी ज़मीन से हमारे धागे जुड़े हुए हैं। गांव का जीवन शहर की लाइफ स्टाइल से बहुत अलग होता है। गांव शहर की भागम भाग वाली ज़िंदगी से बहुत दूर होते हैं। गाँव में भोर होने पर सुबह ही अलार्म की जगह कोयल की कूक सुनाई देती है या फिर मुर्गी की कूक कुड़ू कूक। गांव में ना तो शहरों वाला भारी ट्रैफिक होता है और ना ही भाग दौड़ भरी जिंदगी। गांव में कोई दिखावा नहीं होता। गांव के लोगों में आपस में अपनत्व और प्रेम होता है। वे आपस में सुख और दुख बांटते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, यही गांव की पहचान है। पेड़ों की ताज़ा हवा, ताज़ा और शुद्ध दूध, रसायनों से मुक्त ताज़ा सब्जियाँ, गांव के चौपालों की रौनक हर किसी को गांव की ओर खींच लेती है। सभी ग्रामवासियों का एक दूसरे के लिए लगाव, उनका एक दूसरे की मदद के लिए सदैव तत्पर रहना, यही तो हमारे गांव की विशेषता है। शहर के लोगों में यह खूबी कोसों दूर होती है। गांव में जब भी बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू से गाँव महक उठता है। मिट्टी की खुशबू मन को आनंदित करती है। वहाँ की मिट्टी से हमारे दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। गांव की मिट्टी की सौंधी गंध में ही तो जीवन की गरिमा है। गांव मेरे लिए नया न्यारा नहीं है। मैं गांव में ही पैदा हुआ और इंटर तक की शिक्षा भी मेरी गांव में ही हुई है। मैं पुनः यादों के समंदर में गोते लगाने लगा। भीतर की सरगोशियां बाहर आ गई। माँ बाबूजी अपने गांव जाने की कल्पना मात्र से पुलकित हो उठते थे। मेरी आंखों के सामने वह दृश्य तैरने लगा जब बाबूजी के रिटायरमेंट के 5 साल बाद ही मैंने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर गांव का पुश्तैनी मकान और ज़मीन बेच दी थी। गांव का पुश्तैनी मकान और ज़मीन बेचने के बाद माँ बाबूजी अनमने से रहने लगे थे। शायद वे अंदर ही अंदर टूटने लगे थे। मेरी एक गलती ने किस तरह बदल दिया था माँ बाबूजी का जीवन। मैं भी अपने गांव अपनी ज़मीन से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। शायद वे शहर में मेरे यहाँ अपने आप को शरणार्थी समझने लगे थे। इसीलिए गांव का पुश्तैनी मकान और ज़मीन बेचने के बाद माँ बाबूजी अधिक समय तक जीवित भी नहीं रह पाए थे। आज मन बहुत दुखी है। आज भी मेरे भीतर दबी अपराध बोध की भावना सीना तान कर मेरे सामने खड़ी हो गई है। मेरी आंखों के कोरों में गीलापन गहरा हो गया है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मोती, जिसे लिखा है महेंद्र सिंह जोशी ने। यह एक पंजाबी कहानी है। इस कहानी में यह कहानी देश के बंटवारे के समय की है। यह बहुत ही दर्द भरी कहानी है। मोती एक कुत्ता है जो दित्ता अपनी पत्नी के लिए लाता है। दित्ते के बच्चे मारे गए हैं, उसके पालतू जानवरों को भी ले लिया गया है। उनका धर्म बदलने से उनका शोषण होता है। जानवरों के साथ मनुष्य का मोह भी है। तो चलिए कहानी सुने। दित्ते ने बहुत ही धीरे से सरकाते हुए मोती को अपनी पत्नी की ओर किया और कहा, लो तुम्हारे लिए रखी। पाटे पर बैठे हुए रखी अचरज में पड़ गई, बोली, मोती? उसके चेहरे पर आश्चर्य था। फिर जब उसने बच्चों की आंखें देखी, उसे लगा जैसे वह नशे में डूबी हुई दो कटोरियां हों। उसने जल्दी से उसे अपनी गोद में ले लिया। देश के बंटवारे का समय था। लोग इधर उधर बिखर गए थे। लोगों को काटा मारा जा रहा था। जिसके हाथ जो कपड़ा लत्ता सामान आया वह गठरी बांधकर इधर उधर जाने लगे। तो उसके एक जिगरी दोस्त ने अपनत्व से कहा, तुम भी पाकिस्तान चले जाओ। पर दित्ते के चेहरे पर शिकन आ गई, जैसे कोई उसे जड़ से उखड़ने के लिए कह रहा हो। वह सोच में पड़ गया। उसके दादा, चाचा, पापा, दादा के दादा, उनके खेतों में कनक, ज्वार सब यहाँ इसी मिट्टी में। उसका बड़ा लड़का 6 फुट का लंबा सुंदर एक पुलिस हाकिम की से झगड़ पड़ा। गांधी जी को कुबोल बोला गया। यह बात वह सुन ना सका। फिर वह कहाँ गया पता नहीं। अगर वह कहीं मिल जाता तो वह उसे के लिए तवीत बनवाता। वह जहाँ जाता उसके साथ जाता, पर वह उसे उसका फूल सा बच्चा कभी नहीं मिला। उसका दूसरा बेटा उसके बुढ़ापे की लाठी नई लुंगी तहमत पहन के नानके मिलने गया था, मुड़कर वापस नहीं आया। विचित्र को बहुत मोह था। वह सोचता था, किसी समूह ने तो उसे नहीं मार दिया। मारने वालों का क्या कोई धर्म या कोई खुदा होता है? जैसे काला सिंह ने चेतरी के सोए हुए सगे भतीजे का गला काट दिया, उसने सोचा किसी मुसलमान का नाम लग जाएगा। उसने जायदाद की खातिर तो ऐसा किया था। फिर वह सोचता, इंसान बोरियां बिस्तर बांध कर सामान उठाकर चला तो जाए, पर अपने सगे संबंधियों की रूहों का क्या करे? आप भी यहां से चले जाओ पाकिस्तान, सब कहते। उसे विस्मय हुआ, किसके पास जाए पाकिस्तान? हमारा क्या है वहां? और जब वातावरण में चारों तरफ आग भड़क उठी थी तो कुछ लोग, गांव के लोगों ने उसे समझाया, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम अपना नाम ही बदल लो, क्या पता कब उत्पाती लड़के कब तुम्हारे पे हाथ उठा ले, कब कुछ हो जाए। पहले तुम्हारे बुजुर्ग भी इसी तरह तो आए होंगे, कोई मक्का से थोड़ी चल के आए हैं, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या इस जानवर का मांस हो या उस जानवर का, तुम्हें तो नमक के साथ या प्याज के साथ ही रोटी खानी है, तुम नाम बदल लो। उसने अपने मन को समझाया। और वह पहले लोग उसे दित्ता कहते थे, पर अब हरदीत सिंह हो गया। और उसकी पत्नी रखी थी, वह तो रखी ही रही, क्योंकि औरत का नाम पति के नाम से ही तो चलता है। फिर उसने उसके गधे, जो उसके पास चार गधे थे जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी, लोगों ने वह उससे ले लिए क्योंकि उसमें जवाक मौज मस्ती करेंगे। पर अब वो काम क्या करे? पर उसे सफ़ेद पोस नराता सिंह के पास उसे उसके पशु चराने का काम मिल गया। वह उसे 15 रुपये भी देगा। 55 साल की रखी भी किसी के गेहूं चुनने जाती, किसी के खेत में काम करती, फिर भी उसके घर में आटा कभी होता कभी नहीं होता। वह अपने बच्चों को हमेशा याद करती रहती थी, रात को रोती थी, कभी कभी तो उसे कोई काम ही नहीं मिलता था। एक शाम जागीरा उसे बुलाने आया। उसकी बहू के बच्चा होने वाला था। उसे कोई दाई ना मिलने के कारण उसे वह ले गया। बहू को बेटा हुआ। खुशी से बहू ने कहा, जो जी चाहता है मांग लो रखी। रखी ने बिना सोचे समझे एक गधा मांग लिया। जागीर तो बहुत हंसा, हंसता रहा, पर उसने 3 महीने का गधा उसके आंगन में बांध दिया। दित्ता अपनी बीवी की मोटी बुद्धि पर गुस्सा हुआ और कहने लगा, कोई ढंग की चीज मांग लेती, यह अकेला क्या काम कर पाएगा। पर रखी ने उसकी बातों में कोई ध्यान नहीं दिया। वह गधा बच्चा बहुत सुंदर था। वह उसे कभी नहलाती, कभी मेहंदी से उसके शरीर पर कुछ छापे बनाती। वह कहती, यह भार नीट होएगा। उसने उसका नाम मोती रखा था, जो कि उसके बेटों के नाम के पहले अक्षर का था। वह जब भी मोती को बुलाती, उसके याद में उसके दोनों बेटे आ जाते। फिर दित्ते को मियादी बुखार हो गया। बुखार चढ़ता उतरता रहा। वह उसके पैर दबाती, सेवा करती, उसके लिए खिचड़ी बनाती। फिर उसने पैसे ना होने के कारण गिद्धा मल से कुछ पैसे उधार लिए उसकी दवा दारू के लिए। वह उधार चुका ना पाई तो उसका बेटा लक्ष्मण मोती गधे का रस्सी समेत खोल कर ले गया। रखी बहुत दुखी हुई और उसने उसके परिवार को बहुत बददशीसी भी दी। दित्ते ने समझाया, अभी तो वह सिर्फ गधा ही ले गया है, अभी बर्तन बासन सामान ले जाता तो हम क्या करते। मोती का मन वहां नहीं लग रहा था, वह वहां खुश नहीं था। रखी उसकी खूब सेवा करती थी, खूब प्यार करती थी। जुम्मे की रात को रखी को सपना आया कि उसके दोनों बेटे उल्टे लटके हैं और उनका लहू तेल की कढ़ाई में टपक रहा है। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। वह लक्ष्मण के घर तरफ नहीं जाना चाहती थी, पर उसे जाना था मोती को देखने। वह सुबह होने का इंतजार करने लगी और रोशनी होने पर वह दौड़ पड़ी। उसने मोती की हालत देखी, बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मोती उसका ही इंतजार कर रहा था, उसे अंतिम विदा प्रणाम बुलाने के लिए ही उसका इंतजार कर रहा था। रखी की रूह कांप उठी। वह उल्टे पैर घर आकर पाटे पर बैठ गई। लो तुम्हें मोती दूं। दित्ते ने एक छोटा मासूम से 10 दिन का कुतूरा उसके पैरों की तरफ डाल दिया। मोती? अचानक रखी चीखी, तुम इसकी आंखें तो देखो। वह कतूरे को छू कर कह रहा था। रखी ने देखा वह पूंछ हिलाकर उसकी ओर देख रहा है। उसने उसे गोद में ले लिया और बोली, मेरे बच्चे। कतूरे को कुछ समझ नहीं आया, वह रखी को आश्चर्य से देखने लगा। रखी अपना सारा गम भूलकर कतूरे को चूमने लगी और उसकी आंखें ममता से भर आईं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मोती, जिसे लिखा है महेंद्र सिंह जोशी ने। यह एक पंजाबी कहानी है। इस कहानी में, यह कहानी देश के बंटवारे के समय की है। यह बहुत ही दर्द भरी कहानी है। मोती एक कुत्ता है जो दित्ता अपनी पत्नी के लिए लाता है। दित्ते के बच्चे मारे गए हैं, उसके पालतू जानवरों को भी ले लिया गया है। उनका धर्म बदलने से उनका शोषण होता है। जानवरों के साथ मनुष्य का मोह भी है। तो चलिए कहानी सुने। दित्य ने बहुत ही धीरे से सरकाते हुए मोती को अपनी पत्नी की ओर किया और कहा, लो तुम्हारे लिए रखी। पाटे पर बैठे हुए रखी अचरज में पड़ गई, बोली, मोती? उसके चेहरे पर आश्चर्य था। फिर जब उसने बच्चों की आंखें देखी, उसे लगा जैसे वह नशे में डूबी हुई दो कटोरियां हों। उसने जल्दी से उसे अपनी गोद में ले लिया। देश के बंटवारे का समय था। लोग इधर उधर बिखर गए थे। लोगों को काटा मारा जा रहा था। जिसके हाथ जो कपड़ा लत्ता सामान आया वह गठरी बांधकर इधर उधर जाने लगे। तो उसके एक जिगरी दोस्त ने अपनत्व से कहा, तुम भी पाकिस्तान चले जाओ। पर दित्ते के चेहरे पर शिकन आ गई, जैसे कोई उसे जड़ से उखड़ने के लिए कह रहा हो। वह सोच में पड़ गया। उसके दादा, चाचा, पापा, दादा के दादा, उनके खेतों में कनक, ज्वार सब यहाँ इसी मिट्टी में। उसका बड़ा लड़का 6 फुट का लंबा सुंदर एक पुलिस हाकिम की से झगड़ पड़ा। गांधी जी को कुबोल बोला गया। यह बात वह सुन ना सका। फिर वह कहाँ गया पता नहीं। अगर वह कहीं मिल जाता तो वह उसे के लिए तवीत बनवाता। वह जहाँ जाता उसके साथ जाता, पर वह उसे उसका फूल सा बच्चा कभी नहीं मिला। उसका दूसरा बेटा उसके बुढ़ापे की लाठी नई लुंगी तहमत पहन के नानके मिलने गया था, मुड़ कर वापस नहीं आया। विचित्र को बहुत मोह था। वह सोचता था, किसी समूह ने तो उसे नहीं मार दिया। मारने वालों का क्या कोई धर्म या कोई खुदा होता है? जैसे काला सिंह ने चेतरी के सोए हुए सगे भतीजे का गला काट दिया, उसने सोचा किसी मुसलमान का नाम लग जाएगा। उसने जायदाद की खातिर तो ऐसा किया था। फिर वह सोचता, इंसान बोरियां बिस्तर बांध कर सामान उठाकर चला तो जाए, पर अपने सगे संबंधियों की रूहों का क्या करे? आप भी यहां से चले जाओ पाकिस्तान, सब कहते। उसे विस्मय हुआ, किसके पास जाएं पाकिस्तान, हमारा क्या है वहां? और जब वातावरण में चारों तरफ आग भड़क उठी थी तो कुछ लोग, गांव के लोगों ने उसे समझाया, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम अपना नाम ही बदल लो, क्या पता कब उत्पाती लड़के कब तुम्हारे पे हाथ उठा ले, कब कुछ हो जाए। पहले तुम्हारे बुजुर्ग भी इसी तरह तो आए होंगे, कोई मक्का से थोड़ी चल के आए हैं, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? क्या इस जानवर का मांस हो या उस जानवर का, तुम्हें तो नमक के साथ या प्याज के साथ ही रोटी खानी है, तुम नाम बदल लो। उसने अपने मन को समझाया। और वह पहले लोग उसे दित्ता कहते थे, पर अब हरदीत सिंह हो गया। और उसकी पत्नी रखी थी, वह तो रखी ही रही, क्योंकि औरत का नाम पति के नाम से ही तो चलता है। फिर उसने उसके गधे, जो उसके पास 4 गधे थे जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी, लोगों ने वह उससे ले लिए, क्योंकि उसमें जवाक मौज मस्ती करेंगे। पर अब वो काम क्या करे? पर उसे सफेद पोष नराता सिंह के पास उसे उसके पशु चराने का काम मिल गया। वह उसे 15 रुपए भी देगा। 55 साल की रखी भी किसी के गेहूं चुनने जाती, किसी के खेत में काम करती, फिर भी उसके घर में आटा कभी होता कभी नहीं होता। वह अपने बच्चों को हमेशा याद करती रहती थी, रात को रोती थी, कभी कभी तो उसे कोई काम ही नहीं मिलता था। एक शाम जागीरा उसे बुलाने आया। उसकी बहू के बच्चा होने वाला था। उसे कोई दाई ना मिलने के कारण उसे वह ले गया। बहू को बेटा हुआ। खुशी से बहू ने कहा, जो जी चाहता है मांग लो रखी। रखी ने बिना सोचे समझे 1 गधा मांग लिया। जागीर तो बहुत हंसा, हंसता रहा, पर उसने 3 महीने का गधा उसके आंगन में बांध दिया। दित्ता अपनी बीवी की मोटी बुद्धि पर गुस्सा हुआ और कहने लगा, कोई ढंग की चीज मांग लेती, यह अकेला क्या काम कर पाएगा। पर रखी ने उसकी बातों में कोई ध्यान नहीं दिया। वह गधा बच्चा बहुत सुंदर था, वह उसे कभी नहलाती, कभी मेहंदी से उसके शरीर पर कुछ छापे बनाती। वह कहती, यह भार नहीं ढोएगा। उसने उसका नाम मोती रखा था, जो कि उसके बेटों के नाम के पहले अक्षर का था। वह जब भी मोती को बुलाती, उसके याद में उसके दोनों बेटे आ जाते। फिर दित्ते को मियादी बुखार हो गया। बुखार चढ़ता उतरता रहा। वह उसके पैर दबाती, सेवा करती, उसके लिए खिचड़ी बनाती। फिर उसने पैसे ना होने के कारण गिद्धा मल से कुछ पैसे उधार लिए उसकी दवा दारू के लिए। वह उधार चुका ना पाई तो उसका बेटा लक्ष्मण मोती गधे का रस्सी समेत खोल कर ले गया। रखी बहुत दुखी हुई और उसने उसके परिवार को बहुत बदसीसी भी दी। दित्य ने समझाया, अभी तो वह सिर्फ गधा ही ले गया है, अभी बर्तन बासन सामान ले जाता तो हम क्या करते। मोती का मन वहां नहीं लग रहा था, वह वहां खुश नहीं था। रखी उसकी खूब सेवा करती थी, खूब प्यार करती थी। जुम्मे की रात को रखी को सपना आया कि उसके दोनों बेटे उल्टे लटके हैं और उनका लहू तेल की कढ़ाई में टपक रहा है। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। वह लक्ष्मण के घर तरफ नहीं जाना चाहती थी, पर उसे जाना था मोती को देखने। वह सुबह होने का इंतजार करने लगी और रोशनी होने पर वह दौड़ पड़ी। उसने मोती की हालत देखी, बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मोती उसका ही इंतजार कर रहा था, उसे अंतिम विदा प्रणाम बुलाने के लिए ही उसका इंतजार कर रहा था। रखी की रूह कांप उठी। वह उल्टे पैर घर आकर पाटे पर बैठ गई। लो तुम्हें मोती दूं। दित्य ने एक छोटा मासूम से 10 दिन का कुतूरा उसके पैरों की तरफ डाल दिया। मोती, अचानक रखी चीखी, तुम इसकी आंखें तो देखो, वह कतूरे को छू कर कह रहा था। रखी ने देखा वह पूंछ हिलाकर उसकी ओर देख रहा है। उसने उसे गोद में ले लिया और बोली, मेरे बच्चे। कतूरे को कुछ समझ नहीं आया, वह रखी को आश्चर्य से देखने लगा। रखी अपना सारा गम भूल कर कतूरे को चूमने लगी और उसकी आंखें ममता से भर आई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।